समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
वक्त की कद्र करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो जिंदगी की दौड़ में पीछे रहना पड़ सकता है। और अगर एक बार जिंदगी की सफलता की दौड़ में पीछे रह गए तो जिंदगी भर पछताना भी पड़ सकता है। इसी सुविचार के साथ एक नई सुबह और एक नए दिन और ढेर सारी नई चुनौतियों के साथ समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे लेकर आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और तन्वी खुराना। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
गुलाम वक्त का हर शै पे राज, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शै गुलाम, वक्त का हर शै पे राज।
Good morning, Ravi Kapoor, and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 megahertz and the entire Akashwani network. Well, Ravi has already introduced you to our daily news magazine program Aaj Savere, and let us guarantee you that till 8 o'clock you will get a lot of information, be it metro city updates or national or international news or even some historical information related to this particular day, that is 30th of July 2025. And let me just wish you all happy Wednesday. Keep calm, rise and shine. And I think I can also wish everyone a very happy Winds Day, keeping the monsoon season in mind, right? So without wasting any more time, let's begin our program with the news headlines.
जी बिल्कुल, धन्यवाद तन्वी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के किसी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम समझौते पर सहमति देने के विपक्ष के आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ही भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने का आग्रह किया था और कहा था कि अब वे और नहीं सह सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और भारतीय सशस्त्र बलों ने मात्र 22 मिनट में आतंकी हमले का बदला ले लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीन सूत्र तय किए हैं।
आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट होता है कि भारत ने तीन सूत्र तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब दे करके रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं उनको अलग अलग नहीं देखेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों के कमजोर शासन के परिणाम स्वरूप आतंकवादी हमलों में कई नागरिकों की जान गई।
The Rajya Sabha yesterday took up special discussion on India's strong, successful and decisive Operation Sindoor in response to the terrorist attack in Pahalgam. Initiating the discussion, Defence Minister Rajnath Singh congratulated the Indian Army and security forces for eliminating three terrorists in Jammu and Kashmir who brutally killed 26 innocent people in Pahalgam.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पश्चिम बंगाल और झारखंड के तीन दिन के दौरे पर रहेंगी। पश्चिम बंगाल के दौरे में राष्ट्रपति मुर्मू कल्याणी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। झारखंड दौरे में राष्ट्रपति मुर्मू देवघर स्थित एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। इसके बाद वे धनबाद के भारतीय खनन विद्यालय आईआईटी के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय खनन विद्यालय को सितंबर 2016 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का दर्जा दिया गया था।
Indian Space Research Organization ISRO will launch the NASA ISRO Synthetic Aperture Radar NISAR satellite today. It will be launched from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota at 5:40 p.m. using the GSLV F-16 rocket. The countdown for the launch began yesterday at 2:10 p.m. This mission aims to scan the entire Earth every 12 days. It will provide high-resolution imagery for climate change research and disaster response. The satellite features NASA's L-band and ISRO's S-band radar to track surface changes with centimeter-level precision. It will systematically map Earth's surface, monitoring dynamic processes like glacier retreat, vegetation changes, and earthquakes. NISAR will deliver high-resolution data crucial for monitoring natural disasters, environmental degradation and infrastructure stress.
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के आर्थिक वृद्धि अनुमानों में संशोधन किया है और वर्ष 2025 और 26 के लिए 6.4% वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया है। पहले वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.2% और वर्ष 2026 में 6.3% रहने की आशा व्यक्त की गई थी। विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करते हुए मुद्रा कोष ने अनुमानों में संशोधन की वजह अनुकूल बाहरी परिस्थितियों को बताया। वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2025 में 3% और 2026 में 3.1% रहने का अनुमान है। पूर्व अनुमानों से ये मामूली वृद्धि अमरीकी शुल्कों के आशा से कम असर और वित्तीय स्थितियों में सुधार के कारण होगी। चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2025 में 4.8% और 2026 में 4.2% रहने की उम्मीद है, जबकि अमेरिका की वृद्धि दर 2025 में 1.9% और 2026 में 2% रहने का अनुमान है।
Income Tax Department has ruled out any change in tax rates under Income Tax Bill 2025. IT Department has issued a clarification on the proposed Income Tax Bill 2025, saying that it is only meant to simplify language and remove redundant or outdated provisions and does not propose any change in tax rates. The clarification came after several media reports claimed that the new bill would alter long-term capital gains tax rates for certain categories of taxpayers. In its clarification, Income Tax Department said that the new legislation is focused on making the law easier to understand and streamlining the existing provisions without introducing any changes in the current tax structure.
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा है कि जब तक इजराइल गाजा में लोगों की यातना कम करने के लिए कदम नहीं उठाता और हमास के साथ संघर्ष विराम पर सहमत नहीं होता, ब्रिटेन फलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। दो वर्ष से जारी युद्ध के बाद गाजा में भुखमरी की समस्या बढ़ती जा रही है। गाजा संघर्ष पर केंद्रित मंत्रिमंडल की बैठक में श्री स्टार्मर ने कहा कि अगर इजराइल कुछ शर्तें पूरी नहीं करता तो ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले ही फलिस्तीन का अलग राष्ट्र के रूप में समर्थन करेगा। इन शर्तों में गाजा में सैन्य कार्रवाई रोकना, पश्चिमी तट पर कब्जे की योजना स्थगित करना और दबी राष्ट्र समाधान के आधार पर शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध होना है। लगभग 140 देश औपचारिक रूप से फलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं और पिछले सप्ताह फ्रांस ने भी संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ऐसा ही करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।
A powerful earthquake with a magnitude of 8.7 struck off the Pacific coast of Russia's Kamchatka Peninsula in the wee hours today. The quake, which was centered about 136 kilometers offshore at a depth of 19 kilometers, is the strongest since Japan's 2011 megaquake. Tsunami warnings have been issued for parts of Russia and Japan. In Russia's Kamchatka Peninsula, waves as high as 3 to 4 meters were reported, and people were urged to stay away from the coast. In Japan, waves up to 1 meter are expected along the Pacific coast. In the United States, the National Weather Service has issued tsunami advisories for parts of South Alaska and Aleutian Islands. And moving towards sports, in badminton, India made a strong start at the Macau Open tournament with several impressive performances across categories. In men's doubles, star duo Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty sailed into the second round with a commanding win over Malaysia's Lo Hang Yi and Neng Eng Yong. In women's singles, Anmol Kaur and Tasneem Mir progressed to the main draw after winning their qualifiers. Anmol defeated Azerbaijan's Kesha Fatima Azra, while Tasneem overcame Thailand's Thidapron Klibyusong. In men's doubles qualifying, Dinkyu Singh Konthuyam and Aman Mohammed impressed with a win over a Hong Kong pair to secure a spot in the main draw.
तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के समाचारों की जानकारी दे रही हैं तन्वी खुराना।
Let's begin with Chennai. Chennai Metro Rail Limited, CMRL, has offered a digital store value pass, SVP, via its official app, enabling cashless travel with a 20% fare discount. Valid for 5 years from the last recharge, the SVP generates a daily QR code for contactless entry. Users can recharge between 50 rupees to 3000 rupees, with fares deducted per ride and balances carried forward. The pass is also accepted at CMRL parking lots, offering additional savings. CMRL urges commuters to adapt the app-based SVP for convenient and discounted travel. Some more news from Chennai. Staff Selection Commission of the Southern Region Chennai has invited applications from eligible candidates for engagement of two young professionals in information technology purely on contract basis for a period of 1 year in its official website. Moving towards Bengaluru, Karnataka Deputy CM D.K. Shivkumar announced that the Greater Bengaluru Authority will soon start ward mapping and boundary fixing. Public suggestions on ward reconstitution will be accepted until November 1st. Reservations will be set and a report submitted to the court before municipal elections. Of 24 lakh property khatas in the area, 6.5 lakh have been digitized as e-khatas. And for Hyderabad, the Greater Hyderabad Municipal Corporation, GHMC, has launched a 10-day intensive sanitation drive across 150 wards to ensure public health during the ongoing monsoon season. The drive began yesterday and will continue till 10th of next month. GHMC Commissioner R.V. Kernan conducted field inspections in L.B. Nagar and Char Minar zones yesterday and reviewed sanitation efforts. Sanitation workers have begun clearing garbage from roads, colonies and public spaces, while clogged drains are being cleaned to prevent water stagnation. The entomology teams are carrying out anti-larval operations and fogging in high-risk areas to combat the mosquito menace. So these were the updates from three cities: Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now let me ask Ravi about Delhi, Mumbai and Kolkata.
जी बिल्कुल, शुरुआत दिल्ली से करते हैं। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र 4 अगस्त से शुरू होगा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने से सदन बुलाने का औपचारिक आदेश मिलने के बाद विधानसभा सचिव ने यह जानकारी दी। दिल्ली सचिवालय द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि दिल्ली विधानसभा का तीसरा सत्र 4 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद ये तीसरा सत्र होगा। दिल्ली की दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इस फैसले से महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ेगी और दिल्ली को 24 घंटे बिजनेस हब बनाने में मदद मिलेगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़े प्रावधान भी किए गए हैं, जिनमें सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड, सुरक्षित परिवहन, लिखित सहमति और पॉश एक्ट के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति की अनिवार्यता शामिल है। साथ ही सभी कानूनी लाभ जैसे ईएसआई, पीएफ, बोनस, वेतन बैंक के माध्यम से और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मुंबई की ओर। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल मुंबई स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में 64 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पुलिस वीरता पदक प्रदान किया, जबकि 4 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 38 अधिकारियों और कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृह राज्य मंत्री शहरी योगेश कदम, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पुरस्कार विजेताओं जो हैं उनके सदस्य उपस्थित थे। चलते हैं कोलकाता की ओर। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थित एम्स कल्याणी 30 जुलाई 2025 को अपना पहला दीक्षांत समारोह आयोजित करेगा। इस समारोह में संस्थान के पहले MBBS बैच के साथ साथ PGCC के छात्र भी स्नातक उपाधि प्राप्त करेंगे। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल डॉ CV आनंद बोस इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी FM गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और तन्वी के साथ, और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तन्वी, वैसे जब आज सुबह मैं ऑफिस आ रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं बारिश शुरू ना हो जाए, लेकिन बाहर झांक कर देखा तो सब कुछ ठीक ठाक था।
Absolutely. I think it was raining last night because my car had those raindrops.
जी जी, मुंबई में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।
Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain, just like Bengaluru. And the minimum temperature, if we talk about Chennai, was 28 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. And for Bengaluru, the minimum temperature was 19 degrees and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover somewhere between a minimum of 25 degrees and a maximum of 31 डिग्री सेल्सियस।
अभी जब आप मौसम का हाल श्रोताओं को सुना रही थी तो देखिए पीछे से बादल के गरजने की भी आवाज आ रही तो ऐसा लगने लगा कि अरे भाई कहीं स्टूडियो में ही तो बारिश शुरू नहीं हो जाएगी। Anyhow, आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
जी, Let's begin with 1775. In this year, British explorer Captain James Cook safely returned to England at the end of his second voyage. During this expedition, James made important contributions to the exploration and mapping of the specific region. In the year 1869, world's first oil tanker, the Charles, departed the United States for Europe carrying 7,000 barrels of oil. In the year 1836, the first English language newspaper in Hawaii, USA was published. If we talk about 1935, the first Penguin books were published, starting the paperback revolution. In 1957, Export Risk Insurance Corporation of India was established, through which exporting materials were insured. And in 1992, the Supreme Court of India declared that capitation fee in educational institutions is unlawful.
सन 2000 में आज के दिन संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल द्वारा खाली किए गए क्षेत्रों में शांति सेना की तैनाती आरंभ की। सन 2001 में आज के दिन श्रीलंका सरकार ने मुक्ति चीतों पर से प्रतिबंध हटाने से इनकार किया। सन 2002 में आज के दिन कनाडा ने अलकायदा सहित 7 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया। हॉलीवुड अभिनेत्री पामेला एंडरसन ने गायक किड रॉक से विवाह किया सन 2006 में आज के दिन। और सन 2007 में आज के दिन चीनी वैज्ञानिकों ने झेंगझाऊ में लगभग 50 लाख साल पुरानी चट्टानों की खोज की। और सन 2008 में आज के दिन नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला को कोलंबो में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति मिली। तो ये तो बात थी इतिहास की। और अब समय हो गया है कुछ विशेष महान भावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में बात करने का। तो इस क्रम में तन्वी, आज सबसे पहला नाम है उड़िया साहित्यकार अल्टा बलाभा मोहंती का, जिनका जन्म हुआ 30 जुलाई 1887 और निधन 30 जुलाई 1969 को, यानी इनका जन्म और जो निधन है वो एक ही दिन 30 जुलाई को हुआ
जी।
भारत सरकार ने अल्टा बल्लाभा मोहंती को साल 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। अल्टा बल्लाभा मोहंती का जन्म सन 1887 में कटक में हुआ। उन्होंने उड़िया साहित्य में मास्टर ऑफ आर्ट्स और संस्कृत में एमए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद राविन शाह विश्वविद्यालय कटक ओडिशा में अल्टा बल्लाभा मोहंती प्रोफेसर बन गए। वे प्राची समिति 1925 से 1934 के बीच संस्थापक थे। ये एक साहित्यिक संस्था थी तन्वी, जिसने उड़िया साहित्य को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अल्टा बल्लाभा मोहंती ने मदाला पंजी का एकमात्र उपलब्ध प्रिंट रिकॉर्ड भी प्रकाशित किया था।
टुडे वी आर रिमेम्बरिंग हेनरी फोर्ड। Today is his birth anniversary, an American industrialist and business magnate. As a founder of the Ford Motor Company, he is credited as a pioneer in making automobiles affordable for the middle-class Americans through the system that came to be known as Fordism. In 1911, he was awarded a patent for the transmission mechanism that would be used in the Ford Model T and other automobiles. He founded the Ford Motor Company in 1903, after prior failures in business but success in constructing automobiles. So we all use and know the Ford cars, and I'm sure on the road we know that Ford is a successful company, and all the credit goes to nobody else but Henry Ford.
Aur Ford car jo hai, aap jaise aapne zikr kiya, mazbooti ke liye jani jati hai
ji.
और अब जिक्र भारतीय औषध विज्ञानी और ऑर्थोपेडिक सर्जन विष्णुपद मुखर्जी का, जिनका जन्म हुआ 1 मार्च 1903 और निधन 30 जुलाई 1979 को। सर्जन विष्णुपद मुखर्जी भारत में औषधीय अनुसंधान और दवाओं के मानकीकरण के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए 4th सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया था। विष्णुपद मुखर्जी को विष्णुपद मुखोपाध्याय नाम से भी जाना जाता था। विष्णुपद मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय और फोर्ड फाउंडेशन के कलकत्ता कार्यालय के सलाहकार के रूप में कार्य किया था। उनके योगदान से भारतीय दवा कोडेक्सा का प्रकाशन हुआ, जो भारतीय वनस्पति दवाओं की एक संदर्भ पुस्तक है।
It's also the birth anniversary of Emily Brontë, an English writer best known for her 1847 novel, Wuthering Heights. She also co-authored a book of poetry with her sisters, Charlotte and Anne, entitled Poems by Currer, Ellis and Acton Bell. So we are talking about the era, Ravi, where the female writers were not so popular, and Emily Brontë had to use a pen name, so that she can publish her novels and short stories. And she used the pen name Ellis Bell. And this was sad, but this was the case long time ago. Her work was originally published under the pen name, like I said, Ellis Bell. And it was not generally admired at that time. And many critics felt that the characters in her novel were coarse and immoral. However, the novel is now, at this moment, considered to be a classic of English literature. She died in 1848, aged 30, a year after this publication. And I just would like to read one of the most famous lines of her novel Wuthering Heights that includes, "He's more myself than I am. Whatever our souls are made of, his and mine are the same. And I cannot live without my life. I cannot live without my soul." That's Emily Brontë for all the avid readers.
और आपने बिल्कुल सही जानकारी दी कि उस जमाने में जो है महिलाओं को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं किया जाता था किसी खास कार्य को करने के लिए, लेकिन एमिली ब्रॉन्ट ने उस वक्त इतनी अच्छी पुस्तकों का लेखन शुरू किया, तो निसंदेह बहुत ही अचीवमेंट वाली बात है, उपलब्धि वाली बात है।
एब्सोल्युटली, एंड थैंक्स टू हर टुडे वी आर स्टैंडिंग हियर वेयर वुमेन आर डूइंग एवरीथिंग इन एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी।
बिल्कुल ठीक है। जयंतियों में आज सबसे पहला नाम है प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नाथ बोस का, जिनका जन्म हुआ 30 जुलाई 1882 मिदनापुर में और निधन हुआ 21 नवंबर 1908 में। वे गर्म विचारों के क्रांतिकारी थे। एक मुखबिर को जेल के अंदर खत्म करा देने के कारण उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। अरविंद घोष के प्रभाव से वे क्रांतिकारी आंदोलन के संपर्क में आए। अरविंद ने जतिन बनर्जी को 1902 में बड़ौदा के लिए इस उद्देश्य से भेजा था कि वे बंगाल में क्रांतिकारियों के संगठन को बढ़ाएं। जतिन बनर्जी बाद में स्वामी निरालम के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्हीं की प्रेरणा और स्वामी विवेकानंद और बैंकिंग के साहित्य से प्रभाव से सत्येंद्र नाथ बोस ने युवकों को अपने दल में आकृष्ट करने के लिए छात्र भंडार नामक संस्था बनाई और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था स्वदेशी का प्रचार करना।
Today is the birthday of Lisa Kudrow, an American actress. She rose to international fame for her role as Phoebe Buffay in the American television sitcom Friends, which aired from 1994 to 2004. Phoebe has since named one of the greatest television characters of all time and is considered to be Kudrow's breakout role, spawning her successful film career. And I'm sure whosoever is a fan of Phoebe Buffay has heard this classic song, Smelly Cat. So let's hear that.
Smelly cat, what are you? Smelly cat, smelly cat, it's not your fault.
Smelly, 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 really bad.
और तन्वी, आज ही जयंती है जानी मानी अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का, जिनका जन्म 30 जुलाई 1928 और निधन हुआ 4 जून 2023 को, और जिन्हें उनके स्क्रीन नाम सुलोचना से बेहतर जाना जाता है। आप मराठी और हिंदी सिनेमा की एक भारतीय अभिनेत्री थीं, जिन्होंने मराठी में 50 और हिंदी में लगभग 250 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें मुख्य रूप से मराठी फिल्मों जैसे ससुरवास, मीठ भाकर, वाहिनी चिया बागंड्या, भक्ति जाऊ और संगत आयिका में मुख्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। साथ ही उन्होंने 1959 की हिंदी फिल्म दिल देके देखो से लेकर वर्ष 1995 तक हिंदी सिनेमा में निभाई गई माँ की भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता था। और उन्होंने और निरुपा रॉय ने 1959 से लेकर 1990 के दशक की शुरुआत तक माँ की भूमिकाओं को मूर्त रूप दिया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कारों से भी वे सम्मानित हुई थी।
Today is the birthday of Arnold Schwarzenegger, an Austrian and American actor, businessman, former politician and former professional bodybuilder known for his roles in high-profile action films. Schwarzenegger began lifting the weights at the age of 15 and won the Mr. Universe title at the age of 20 and subsequently the Mr. Olympia title 7 times, and he's nicknamed as Austrian Oak. And if we talk about the movie Terminator and the following sequels of Terminator, we cannot forget Arnold Schwarzenegger. Let's hear the theme song of this ultimate film, Terminator. Today is also the birthday of Sir Christopher Edward Nolan, a British and American filmmaker known for his Hollywood blockbusters with structurally complex storylining, and he is considered a leading filmmaker of 21st of century. Well, if you have heard the names Insomnia, The Dark Knight Trilogy, The Prestige, Inception, Interstellar, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer, then we are talking about Christopher Nolan. So let's hear a few words by the legend himself where he's explaining the concept of his film Tenet.
The culmination of some ideas about exploring ideas of time and science fiction that I've had for quite some time. The idea of a bullet being sucked out of a wall and back into the barrel of a gun. That's something I actually put in my film Memento many years ago in a symbolic sense. But I always...
और आज ही जन्मदिन है भारतीय सिनेमा के जाने माने पार्श्वगायक सोनू निगम का। उनका जन्म 30 जुलाई 1973 फरीदाबाद हरियाणा में हुआ और वे भारत के प्रसिद्ध पार्श्वगायक, संगीतकार और मंच कलाकार हैं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बचपन में की और बॉलीवुड में कई हिट गाने गाए। उनकी आवाज में भावनाओं की गहराई और तकनीकी निपुणता का अनोखा संगम है। चलते चलते आज का विचार कि ना संघर्ष खत्म होता है ना शिकायतें, जो खत्म हो रहा है वो उम्र है जनाब। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और तन्वी खुराना को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात आर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।